अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, अह बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन वो अब यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है, और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक्य है ऐसा जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें न जा सकें और न कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप अब्राहम, हां अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते तो मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे।
लूका के इंजील बाब 17। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा,
ये नहीं हो सकता कि ठोकरें न लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए ये मुफीद होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7वीं दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर।
इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा,
हमारे ईमान को बढ़ा।
खुदावंद ने कहा,
अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता, मगर तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गल्ला बानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठे, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तो खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों को जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुमको हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है।
और ऐसा हुआ कि यरूशलम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा,
ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर।
उसने उन्हें देखकर कहा,
जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ।
और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव में गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा,
क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते?
फिर उससे कहा,
उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है।
जब फरीसियों ने उससे पूछा,
खुदा की बादशाही कब आएगी,
तो उसने जवाब में उनसे कहा,
खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है।
उसने शागिर्दों से कहा,
वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है या देखो यहां है, मगर तुम चले ना जाना ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौंधकर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्न आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्न आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह किश्ती में दाखिल हुआ और तूफान में आकर सबको हलाक किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदोम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया, इब्न आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो वो उसे लेने को न उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को न लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने जवाब में उससे कहा,
आए खुदावन, ये कहाँ होगा?
उसने उनसे कहा,
जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे।
लूका के इंजील बाब 18। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही।
किसी शहर में काजी था, न वो खुदा से डरता और न आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो न चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे।
खुदावन ने कहा,
सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बुरगुजीदों का इंसाफ न करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वह उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा, तो भी जब इब्न आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा?
फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही।
दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि या खुदावन्द,